समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं जागृति शर्मा और आज हम कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की पहल और योजनाओं पर बात करेंगे। नारी कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। महिला सशक्तिकरण केवल महिला का अधिकार नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, रक्षा और व्यापार, हर जगह महिलाएं अपनी मेहनत और काबिलियत से नाम बना रही हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक महिलाओं के योगदान ने समाज को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इस संदर्भ में संस्कृत में एक सूक्ति है, तेजो मंडिता उज्ज्वला भवाम्यहम शक्ति शिवालिका। इसका अर्थ है, तेज से सुशोभित और उज्ज्वल मैं शक्ति बनती हूं। और ये शक्ति जब उद्यम क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को लगाती है तो सशक्तिकरण की एक नई कहानी बन जाती है। अपने उद्यम से एक नई टीम बनाकर महिलाएं समाज और राष्ट्र को किस प्रकार आगे ले जा रही हैं और इस राह में किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, इन मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई पहलों और योजनाओं पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जागृति, आपको और सभी श्रोताओं को।
और श्रोताओं, आपके मन में भी महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की पहल और योजनाओं से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर दिल्ली के कोड 011 का इस्तेमाल करते हुए 233104812371177 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। और अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, रवि जी।
हाँ जी, नमस्कार जी।
नमस्कार जी, रवि अपना सवाल पूछे।
हाँ, मैं जानना चाहता हूँ मैम, जो महिला उद्यमी होते हैं उनको मतलब कार्यस्थल पर रखने के लिए क्या क्या मानक होने चाहिए जी, और वो अपना काम कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से अपना चप प्रदर्शन करें, और मैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ जी।
आप उद्यमी की बात कर रहे हैं या फिर महिला कर्मी की बात कर रहे हैं?
इन्होंने दो चीजें ऐसा लगता है जागृति मिक्स कर दिया
जी।
दोनों पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि महिला उद्यमी तो कहीं काम करने का सवाल नहीं उठता, वो तो स्वयं अपने पैरों पर होती हैं, यही तो हमारा आज मुख्य टॉपिक है। और अगर वो कहीं काम कर रही तो अभी हाल के बजट में महिलाओं के लिए छूट दी गई है। पहले महिला रात के समय काम नहीं कर पाती थी, अब कुछ सुरक्षा नियमों के साथ रात के समय भी महिला कर्मी जो है वो काम कर सकती है। तो रवि जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आप, दोनों ही उनको पहलू मिल गए होंगे
जी। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश। प्रकाश अपना सवाल पूछे।
जागृति जी नमस्कार, दोनों विशेषज्ञों को भी नमस्कार। प्रकाश जंगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के हसन बादियों से।
नमस्कार।
मैं दोनों विशेषज्ञों से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक तरफ तो बात करी जा रही है कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए बहुत सारी स्कीमें चालू कर रखी हैं, जबकि मैंने बहुत सी महिलाओं को प्रोत्साहित कर मतलब उनको समझा के भेजा है, बैंकों में जाते हैं लोन के लिए तो वो लोग कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं, तो इनके लिए क्या करना होगा, कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है या क्या है, थोड़ा सा ये बताएंगे
जी।
बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है प्रकाश जी का। देखिए प्रकाश जी, कुछ एक ब्रांचेस हैं बैंक की जहां पर उनको पूरी जानकारी नहीं होती, अपडेटेड नहीं होती है ब्रांचेस, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, उसमें दो तरीके हैं। या तो आप अगर मान लीजिए कई बार कोई कोई बैंक ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर उसको स्कीम आगे ना बता रहा हो, तो उसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन की एक वेबसाइट है, वहां पर जाके आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी बैंक हैं उसमें चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप योजना है, जितनी भी महिलाओं के लिए उद्यमियों के लिए योजना है, उन सब में बैंकों को उसकी हिदायत दी गई है और उनको स्कीम्स के बारे में बताया गया। कई बार क्या होता है, कोई बैंक कर्मी ऐसे होते हैं जागृति, जो कि जिनको पूरी जानकारी नहीं होती, अपडेट नहीं होती, कोई नई पोस्टिंग होकर आए होते हैं, तो ऐसे में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो मुझे लग रहा है आप ऑनलाइन इसको जाके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं अंतिम बात प्रकाश जी, कि ये सारी स्कीम्स ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए आप स्टैंड अप इंडिया में जाना चाहते हैं, तो आप अगर टाइप करेंगे स्टैंड अप इंडिया तो आपको स्कीम की सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। तो वो भी आप पर अंततः तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा, तो आप किसी दूसरी ब्रांच में ट्राई करें, और अगर आप फिर भी नहीं हो रहा है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की साइट पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मुझे स्कीम के बारे में नहीं बताया जा रहा या बैंक को जानकारी नहीं।
बिल्कुल, यानी कि अगर कोई भी लोन से रिलेटेड या फिर किसी भी इस तरह की योजना की अगर उन्हें जानकारी चाहिए और वहां पर नहीं मिल रही है, तो वो इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तो इन्फॉर्मेशन की बात हुई, लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी तो कई बार होती है लेकिन हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहां से मिलेगा, कहां से वो जानकारी आएगी?
देखिए, ज्यादातर जो सरकार की स्कीम्स है महिला उद्यमियों के लिए, वो स्कीम्स फंडिंग से रिलेटेड है। कुछ स्कीम है जिसमें उद्यमी सखी है, जिसमें आपको ट्रेनिंग की सपोर्ट भी मिलती है, बिजनेस प्लान बनाने की सपोर्ट भी मिलती है, एक ट्रेड करके योजना है जिसमें सपोर्ट मिलती है। तो आप उन योजनाओं को सारी जो महिला विकास मंत्रालय है उसमें भी उसकी वेबसाइट पे सारा कुछ दिया हुआ है। प्लस जिन स्कीम्स का हम आज शो में नाम लेंगे, उन शो को, उस स्कीम को अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्ट करने का यही है, पहले आप स्कीम को समझ लें, फिर आप देखें कि आपका जो उद्यमी का आइडिया है उस आइडिया के अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे केटरिंग के लिए अलग स्कीम है, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं।
जी, और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। राजू, अपना सवाल पूछे।
नमस्कार दीदी।
नमस्कार।
और इस मौके पर मुझे नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी आप बताया गया था कार्यक्रम के माध्यम से कि बजट में सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को छूट दी गई है, तो दीदी कौन कौन सी वो छूट है जो महिला उद्यमियों के लिए दी गई है, और जो महिलाएं रात्रि में काम करती है या अब जब सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है तो काम करने भी लग जाएंगी, उनको कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सके?
देखिए, लेबर कोड जो है उसके अंतर्गत महिलाओं को कामकाज करने के लिए छूट गई। पहले महिलाओं को रात्रि के समय जो जहां पुरुष काम करते हैं वहां पर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो हमारे जो नए लेबर कोड आए हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उस पर आकाशवाणी ने समय समय पर बहुत विस्तार से चर्चा करी है और कई दिनों तक चर्चा करी है। उसमें भी ये बताया गया था कि अब महिला रात को देर तक कुछ सुरक्षा नियमों के साथ काम कर सकती हैं। बजट में जिन छूट की बात हो रही है वहां पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी बजट में, उसको हम शी मार्ट कहते हैं, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम कहते हैं, जो स्वयं महिलाएं किसी गांव के मिलके, किसी जगह के मिलके और एक शी मार्ट यानी कि एक दुकान खोल सकती हैं कोऑपरेटिव तरीके से, यानी कि सब मिलजुल कर, उसका हम जिक्र कर रहे थे। तो आप जो लेबर कोड्स हैं उन पे आप जाइए, और लेबर कोड्स में महिला को रात को काम करने की छूट दी गई है। और मैं तो ये कहूंगा जागृति, एक कदम आगे जाके कि आप किस जगह काम करने की बात कर रहे हैं, क्या उनका समय टाइमिंग्स है हमें बताएं, तो हम आपको और स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं।
जी, उसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि वो किस इलाके में है, किस तरह का उनका व्यवसाय है। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछे।
जागृति जी को नमस्कार, और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
नमस्कार।
मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अगर मैं ऐसा लेडीज का ही काम करता हूँ, तो मैं अगर कोई लेडीज कही कि महिलाओं को कोई सहायता करना चाहता हूँ, उनको कोई जानकारी देना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मुझे क्या करना होगा? मैं जो काम करता हूँ वो लेडीज का ही काम करता हूँ, लेडीज ही उसको कर सकती है, तो इसके बारे में जानना था क्या कर सकता
आप, इसके क्या लिए काम क्या करते हैं, ये अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है
जी। वो ऐसा है, वो मतलब फोन पे ही बता नहीं सकता, मतलब वैसे लेडीज का काम ही है ये।
जी जी
जी।
अब लेडीज का काम करते हैं, पहली बात तो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, तो लेडीज का काम करते हैं और ये चाहते हैं कि आगे वो लेडीज को और बताएं, तो ये तो देखिए, यहाँ ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये महिला उद्यमियों के लिए है, तो वो लेडीज अगर कोई अपना छोटा व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसके लिए जो विभिन्न भारत सरकार की स्कीम्स है वो हम आपको बता सकते हैं, आगे उनको कैसे दिशा देनी ये हम बता सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा और खोल कर बताना पड़ेगा, तब हम आपको आगे मार्ग दिखा पाएंगे। और मैं अभी तक हमारे जितने फोन कॉलर्स आए वो पुरुष थे, तो अब देखिए अब महिला कॉलर भी आती है तो मुझे लगता है वो सीधा ही सवाल पूछेंगी।
बिल्कुल, महिला उद्यमिता से जुड़ा हुआ प्रश्न एक महिला पूछ रही है दिल्ली से, सृष्टि, अपना सवाल पूछे।
सर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर वुमेन, मतलब ट्रेडिशनली इट शुड बी गोल्ड या फिर देयर इज अ नीड टू डाइवर्सिफाई।
गोल्ड इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट
एंड मोर ओवर यू नो विद योर काइंड परमिशन वी आर टॉकिंग टुडे सृष्टि अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप यू नो एंड द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स विच सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक आकाशवाणी ऑलरेडी रन्स अ शो कॉल मार्केट मंत्रा एंड अदर प्रोग्राम्स वेयर यू कैन कॉल इन इफ यू हैव गॉट अ बिजनेस आइडिया एंड यू वांट टू स्टार्ट ऑन योर ओन सृष्टि, वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। तो ये आज उद्यमियों के लिए मेरे ख्याल ठीक कह रहा हूँ मैं जागृति,
उद्यमियों के लिए है। निवेश पर बहुत सारी और भी चर्चाएं होती रही हैं और होती रहेंगी, वो एक अलग कार्यक्रम रहता है। इसके अलावा सुशीला जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत में जो महिला उद्यमी हैं वो जब अपना रोजगार शुरू करने के लिए अगर सोचती हैं या फिर अगर किसी का है और उसका विस्तार अगर करना है तो उसमें ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो उनके आड़े आती हैं?
देखिए सबसे पहली जो चुनौती होगी वो अपने घर परिवार से उभर के आती है, ज़्यादातर वहीं पे जो है ना चैलेंजेस होती हैं। और ख़ासकर ये सोच कि महिला अगर बाहर निकलती है तो फिर घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और जनरली जो एक एटीट्यूड है यहाँ पे भी नहीं पूरी दुनिया में है पर कई एरियाज में कुछ ज़्यादा ही है और इंडिया में तो है सही कि विमेन को और औरतों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या इवन निकलना क्यों है बाहर, सब जो भी करना है घर के अंदर ही करो,
अपना घर संभालो,
परिवार संभालो, रसोई संभालो। सो दैट इज द बेसिक चैलेंज यू नो विच हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय प्रॉपर एजुकेशन एंड हियर विमेन देमसेल्व्स हैव टू डू इट। यू नो ये हर वक्त कहते हैं कि पुरुष बाधाएं डालती हैं पर बहुत सारी महिला भी जो है ना उस पुरुष की जो सोच है उसको बढ़ावा देती हैं
और वही आगे चलकर रुकावट बन जाती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जैसे हम शहरों में अगर रहते हैं, शहर में इंफॉर्मेशन है, इजी आप हर चीज को एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाके में जाते हैं, एक कोई ग्रामीण किशोरी है या फिर कोई एक महिला है, उसे खुद का अगर रोजगार शुरू करना है तो वो किस तरह से शुरू कर सकती है और उसके लिए क्या कुछ ऐसी बेसिक ऐसी जरूरतें हैं या कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी है कि वो योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए तभी वो शुरू कर सकती है?
मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि देखिए हम सोचते हैं गांव या शहर में फर्क है, जो भी जेंडर स्टडीज लिखते हैं पढ़ते हैं वो देखते हैं कि कोई भी धर्म हो, भाषा हो, इलाका हो, ये जो मानसिकता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है कि सोच जो है, ये नहीं कह सकते शहर में जो रहते हैं उनका सोच कुछ अलग होगा, जो गाँव में रहता है वो अलग होगा, वो नहीं है। बाकी चैलेंजेस तो वही है पर यही है शहर में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं जो गांव में नहीं मिलता, पर वो भी आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का, तो कितना कुछ उससे फायदा उठा सकते हैं
जी। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर अपना सवाल पूछे।
नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारे जो मैं गांधीनगर में रहता हूँ, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़े की मार्केट है
जी।
यहाँ कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो अपना काम दूसरों से करवाते हैं, ज्यादातर महिलाएं ही वो काम करती हैं झंडे बनाने का, तो वो ठेकेदार उनको बहुत कम कीमत में मेहनत देते हैं उनको जो कि असल होनी चाहिए, तो उनको संगठित करके एक जगह उनको जैसे 20-50 महिलाएं बनाती हैं अपने घरों में ही मशीनें से झंडे बना बना के उनको देती हैं, तो एक हफ्ते में माल जो आ जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या योगदान हो सकता है?
देखिए धर्मवीर जी, इसमें ऐसा होता है कि जब वेंडर और सप्लायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कीमत तो उन दोनों के आपस के अरेंजमेंट में ही तय की जाती है। अब अगर मान लीजिए एक झंडा उदाहरण के तौर पे 25 रुपए का है और असल में वो 35 रुपए का होना चाहिए, 40 रुपए का होना चाहिए। तो आपका सवाल ये है कि क्या हम उनको ठीक कीमत दिलवा सकते हैं? तो इसमें सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहे कि, क्योंकि दो लोगों के बीच में कीमत तय की जाती है, ग्राहक और सप्लायर के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि सभी महिलाओं को आप संगठित करके और जो कस्टमर्स हैं उन पर वो एक संगठन बना के उनको एक रिप्रेजेंटेशन दें कि हम लोगों की मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है और हम लोगों को इसको पर झंडा हमको ज़्यादा कीमत मिलनी चाहिए। और जब वो देखेंगे कि सारी महिला संगठित होकर एक साथ आई हैं तो लाजमी बात है कि जो भी उनसे झंडे खरीदता है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी और वो धीरे धीरे करके प्राइस रिवाइज कर देंगे। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। इसमें मैं कोई इसको ये नहीं कह रहा कि आप एक आंदोलन बना लीजिए उसको या सब महिलाएं जाके वह धरना दे के बैठ जाएं, ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है। पर इसको एक बहुत तरीके से भी एक अपना संगठन बना के और एक रिप्रेजेंटेशन दे के कोशिश करिए धर्मवीर जी, मुझे उम्मीद है कि उनको अपनी पूरी कीमत मिल पाएगी।
ये एक इसका इजी वे आउट हो सकता है। और इस बीच कश्मीर से लतीफ हमारे साथ जुड़े हैं। जी लतीफ, अपना सवाल पूछे।
नमस्ते।
नमस्कार।
नमस्ते।
मेरा नाम लतीफ अहमद रीना, कश्मीर सोनामर्ग से।
जी सवाल पूछे।
मेरा सवाल तो ये है सर, जो कश्मीर में महिला है वो अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सा स्कीम है कश्मीर में?
राज्य विशेष के बारे में
नहीं, बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं इनको कहूंगा कि आर्टिकल 370 के बाद अब कश्मीर बाकी राज्यों की तरह ही है, जैसे बाकी राज्यों में परिस्थिति है। जो स्कीम्स बाकी राज्यों में महिलाओं के लिए उद्यमियों के लिए उपलब्ध है
वही योजनाएं हैं,
सारी ही योजना। उसमें मैं एक दो स्कीम्स का लतीफ जी के लिए नाम ले लेता हूँ। स्टैंड अप इंडिया है जिसमें महिलाओं को 1 करोड़ तक की सहायता मिलती है बैंकों से, शेड्यूल्ड बैंक्स में जाके अपना बिजनेस आइडिया आप दें। इसके अलावा इससे भी अच्छी योजना है जो मुद्रा योजना है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
उसके अंदर आप जाके आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं मांगी जाती है। तो ये लतीफ जी आप अगर स्पेसिफिक बिजनेस आइडिया हमें बताएंगे या वो क्या शुरू करना चाहती हैं तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पर मेन मुद्दा लतीफ जी का ये था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में क्या लाभ उठा सकते हैं। तो आपको मैं बड़े बड़े फख्र से बता सकता हूं कि जो जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं महिला उद्यमियों के लिए वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर में अब उपलब्ध हैं। आप उसका बाकायदा फायदा आप बैंक के पास सीधा जा सकते हैं या आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं।
जी, और त्रिपुरा से अविनाश सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछे अपना सवाल।
जी सर नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे त्रिपुरा में देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से और यहाँ पर हैंडलूम की अगर यहाँ पर कुछ अपना काम महिला अगर शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से कितने तक का लोन मिल सकता है? अपना जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इस अगर प्लान बताएंगे तो मान लीजिए कि वो हैंडलूम के ऊपर एक अपना शॉप खोलना चाहते हैं कि वहाँ पर एक साथ 10 लोग महिला का काम करेंगे तो कितने तक लोन वहाँ पर मिला जा सकता है?
देखिए एक स्कीम है, मुझे याद आ रही है जागृति आपकी इजाजत से, महिला उद्यम निधि स्कीम है इसको, सिडबी की स्कीम है। इसके अंतर्गत आप 10 लाख रुपए का तक का ले सकते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दी जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपने एक्सपैंड करना है बिजनेस को उसके लिए उपलब्ध है। और मैं यहाँ जरूरी बात जो जागृति बताना चाहूंगा कि ये सारी की सारी स्कीम्स दो तरीके हैं हमारे पास पता लगाने, क्योंकि ये एक सवाल सबका रहेगा कि इसको हम किस तरीके से पता लगाएं। तो या तो आप ऑनलाइन, आपके पास अगर स्मार्टफोन है आप उस पर टाइप करके या कोई कंप्यूटर आपके इर्द गिर्द है वहां से आप इसकी, जैसे ही आप जो स्कीम हम बोल रहे हैं उसका नाम टाइप करेंगे आपको तुरंत उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। दूसरा इससे भी अच्छा तरीका है कि आपके निकट जो बैंक है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकार की स्कीम से, देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या आती है महिला उद्यमी को स्टार्ट करने में, अगर आपके पास आइडिया भी है आपके पास आत्मविश्वास भी है तो बिजनेस शुरू करने के लिए तो थोड़े पैसे चाहिए होते हैं ना, फंड्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की जितनी भी स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये महिला उद्यम निधि स्कीम है, इन सब स्कीम में सरकार की मंशा रहती है कि वो आर्थिक तौर पर सहायता उस महिला उद्यमी को दे। वो बैंक के से आएगी आपके पास सहायता, वो बैंक के माध्यमों से आती है। तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बैंक के पास जाएं, जो भी आपके पास में शेड्यूल बैंक है उनको आप बताएं कि ये महिला स्टार्ट करना चाहती है, तो जो हमने स्कीम्स के नाम बोले उसमें से किसी ना किसी स्कीम उस बैंक को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन जाके जो विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, महिला विकास मंत्रालय है, उसमें आप जाके उसमें भी आप एक क्वेरी डाल सकते हैं, वहां से आपको जवाब आएगा और आपको बकायदा इसको लोग, मैंने देखा है जागृति क्या करते हैं, क्योंकि थोड़े देर कोशिश करते हैं फिर गिवअप कर देते हैं, उनको लगता है छोड़ो अब क्या, ये मिल तो रहा नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है, ये हो नहीं पाएगा हमसे। तो मुझे लग रहा है कि इस एक कामयाब उद्यमी जो होता है वो हिम्मत नहीं हारता है और महिलाओं के लिए तो विशेष ये कहा जाता है कि अगर वो जिस चीज को ठान लेती हैं करने की, उसको जरूर करके दम लेती हैं, तो बकायदा हर एक स्कीम की इतनी विस्तार से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको तुरंत उससे पता लग जाएगा।
ये बैंक्स में भी तो दे ऑल्सो एडवर्टाइज ना, वो भी अपना कैंप्स लगा के
जागरूकता शिविर इस तरह की कैंपेनिंग करते हैं।
प्लस इन द विलेज, ग्रामीण इलाके में जो सरपंच होंगे उनको भी तो एक
क्या ग्राम पंचायत के स्तर पर भी इस तरह की जानकारी मुहैया कराई जाती है, या फिर इस तरह का, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा कि आइडिया है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन कई बार ये होता है कि शुरुआत फिर भी नहीं मिल पा रही है, कि कुछ इस तरह का एक माहौल, या फिर जिसे कहें कि या सरकार कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वो जैसे ग्रामीण स्तर पर तो पंचायत हो गई, शहरों में अलग तरह के बहुत सारे सेंटर्स मिल जाते हैं, तो क्या वहां पर वो जाकर ले सकते हैं?
देखिए जागृति, 100 करोड़ से ज्यादा इस समय इंटरनेट की रीच है, और सरकार जिस प्रकार डिजिटल पुश दे रही है, क्योंकि बजाय इसके कि हर जगह सेंटर बनाए जाए, वहां व्यक्ति रखा जाए, उनको एजुकेट किया जाए, अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, या आपके इर्द गिर्द किसी और आपके सहेली के पास, किसी भाई के पास, किसी के पास भी, तो आप उस पर टाइप करेंगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन, बल्कि जो आपको कोई व्यक्ति देगा, शायद वो कोई चीज चूक जाए बताने में, परंतु जो इंटरनेट के माध्यम से जो डिजिटल इंडिया का पुश है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बल्कि मैं इससे एक कदम और आगे जाऊंगा, आप बहुत सारी स्कीम्स में तो अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं, हालांकि बिजनेस तो उसको आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप दुकान लगा रहे हैं तो करेंगे, पर आप तो मुझे लग रहा है कि वो भी है, ग्राम पंचायत को जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, वो समय समय पर ऐसी मुहिम चलाता रहता है, पर कोशिश ये रहती है कि आप उसको डिजिटल करें।
प्लस ऑल इंडिया रेडियो, मैं कितना प्रोग्राम्स सुनती हूँ, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा डिस्कशन, तो वो भी तो एक पावरफुल रीच है।
बिल्कुल, ये तो सशक्त माध्यम है, लोक प्रसारक है, अधिक जानकारी के लिए जो भी जिस तरह की सरकार की पहल होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो समय समय पर हमारे यहाँ पर उस पर चर्चाएं की जाती हैं। हम अभी बैठकर इस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, और एक और अगले श्रोता है हमारे होशियारपुर से, सेठी, सवाल पूछे अपना।
हाँ जी जागृति जी, नमस्कार।
नमस्कार,
मेरा विशेषज्ञों से भी बहुत नमस्कार।
नमस्कार सेठी साहब।
ये सर, जैसे कि बताया जा रहा कि भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं महिलाओं के लिए
जी,
वो क्या गांव में भी कोई प्रशिक्षण, कोई ऐसा कोई साधन जुटाया जा सकता है जिससे कि कोई महिला अनपढ़ है, जिसको भी कोई राजभवन नहीं आता, उसको मतलब शिक्षा देने का कोई कार्यक्रम हो,
बहुत कम पढ़ी लिखी कोई भी महिलाएं हैं जिन्हें बैंक और लोन इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं है, तो
नहीं, मेरे ख्याल सेठी साहब का सवाल ये तो है ही है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि कोई महिला अगर गांव में है और वो इस बारे में ट्रेनिंग भी चाहती हैं, तो मैं आपको एक और स्कीम भारत सरकार की, उसके बारे में सेठी साहब को बताना चाहूंगा, जिसको हम ट्रेड कहते हैं। ये ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत आप ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे, यानी कि कोई महिला उद्यमी अगर आगे आके काम करना चाहती है, पर उसको लगता है मेरे अंदर अभी जो कौशल विकास है वो पूरा नहीं है, अगर मुझे कोई थोड़ा सा हाथ पकड़ के सिखा दे या थोड़ा सा कोई मुझे बता दे तो मैं उस काम को कर पाऊंगी, तो इस ट्रेड स्कीम के अंतर्गत आपको, यहां तक जागृति में बताना चाहूंगा और सेठी साहब को भी, कि मार्केटिंग और काउंसलिंग सपोर्ट भी दी जाती है। मैंने एक महिला मुझे मिली कुछ समय पहले, उनकी पापड़ बनाने में, बहुत स्पेशल किस्म का पापड़ बनाती थी, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको बेचा कैसे जाए, इसको कौन खरीदेगा, तो या तो सबको चखवाएं आप, वो तो बहुत कठिन काम है, तो मार्केटिंग और काउंसलिंग सपोर्ट भी इस ट्रेड कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। तो सेठी साहब, आपके जो भी बिटिया है, बहन है, पत्नी है, जो भी आपके इर्द गिर्द महिलाएं हैं, आप उनको ये बात बताइए कि वो ट्रेड स्कीम ऑनलाइन जाएं, या अपने गांव में संपर्क करें, या महिला बाल विकास मंत्रालय की कोई संस्था है उससे संपर्क करें, और बकायदा महिलाओं उद्यमों को ये बात सिखाई जाती है
जी। और अभी आप सुशीला जी, आप बात कर रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर, जब हम चुनौतियों की बात कर रहे थे कि अक्सर जब घर से बाहर निकलने की बात आती है तो चुनौतियां वहीं शुरू हो जाती हैं, जो मानसिकता होती है, अब ऐसे में जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना है, नौकरी भी करनी है, और उद्यम भी अगर शुरू कर रहे हैं तो उसे भी चलाना है, तो इसमें फिर किस तरह का कोई इस तरह का काउंसलिंग या कुछ इस तरह के अन्य कोई ऐसी पहल हैं जिनका सहारा वो महिलाएं ले सकती हैं आगे बढ़ने के लिए?
ठीक है, सबसे पहले जो है ना, पुरुष को आगे आके घर के जो काम काज है उसमें हिस्सा लेना होगा। हिंदुस्तान की जो औरतें हैं उन्होंने बहुत तरक्की करी, पर उस हिसाब से हिंदुस्तान के पुरुष जो है उतना नहीं कर पाए। ये पूरा एक विश्व का एक सर्वे है कि जो साउथ एशिया के जो मेन हैं वो डोमेस्टिक वर्क में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जब तक ये इम्बैलेंस रहेगा, क्योंकि देखिए एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस बात होती है, एक सेक्सुअल इम्बैलेंस की बात होती है, विमेन फेस व्हाट इज कॉल्ड डबल बर्डन, घर आके उनको एकदम काम करना होता है, बच्चे देखने होते हैं, पुरुष को आके आके उसको भागीदारी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर जो है, बाहर निकलते हैं तो एक सेफ सिक्योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस सेफ्टी पे नहीं ध्यान दोगे, महिलाओं के लिए जो चैलेंजेस होता है, इनसिक्योरिटीज, वो बहुत मान्य रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एजुकेशन। सो जैसे शुरू से जब नारीवाद का शुरू हुआ था, एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एनफ्रेंचाइजमेंट, ये तीन थे, उन मुद्दों से ही उन्होंने शुरुआत किया। सबसे पहले एजुकेशन, फिर एम्पावरमेंट विच इज एम्प्लॉयमेंट, एंड देन एनफ्रेंचाइजमेंट। तो ये अभी भी एक, दीज थ्री चैलेंजेस रिमेन विद हिम, बट विद चेंजेस, जेंडर पैरिटी जो है, बहुत सारे उद्योग में ऐसा है कि महिला कम कमाती हैं, हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में एक खास बात है कि पुरुष और महिला की जो एक जेंडर पैरिटी है, ये बहुत अच्छी बात है, पर अभी भी दुनिया में देखते हैं जेंडर पैरिटी इनकम्स या वेल्थ क्रिएशन या बीइंग ऑन बोर्ड्स, ये सारा बहुत बहुत आगे, बहुत टाइम लगेगा इसको इक्विटी करने में।
बिल्कुल, अभी इन सबको सॉल्व आउट करने में टाइम लगेगा, और बहुत जरूरी है समानता, क्योंकि जब गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पर बोझ ज्यादा आएगा तो उसके गड़बड़ाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसा आप अभी कह रहे थे कि जो महिला है वो कार्यालय अगर जा रही है तो काम से, वो घर पे आ रही है तो काम पर ही लौटती है, तो पुरुषों को ये भागीदारी अपनी निभानी होगी कि भाई आधा आधा बांट लो, आप भी जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। इसके अलावा आजकल जो ऑनलाइन माध्यम है, हम अभी ये बात कर रहे हैं कि सारी जो जानकारी है वो ऑनलाइन माध्यम से स्मार्टफोन के जरिए हम तुरंत हासिल कर सकते हैं, और उसके आगे प्रोसेस जब हमें करना होता है तो हम बैंकिंग उन इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, लेकिन इस समय पर धोखाधड़ी के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए डिजिटल साक्षरता कितनी ज़रूरी है?
देखिए, जब मैंने इंटरनेट की बात करी जागृति, तो मैंने ये बात करी कि आपको वहाँ से सिर्फ जानकारी लेनी है कि स्कीम की जो जो मुख्य धाराएं हैं वो क्या हैं, कि सरकार इसमें क्या, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे अभी ट्रेड की बात करी थी, जो सेठी साहब जो पूछ रहे थे, कोई क्वेरी वाले थे, तो उसमें अगर हम उस स्कीम की बारीकी में जाएं तो आपको एक एनजीओ एमएसएमई से जुड़ा होना चाहिए जिसके माध्यम से आप वो अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो इसकी बारीकियां हैं जागृति, वो बारीकियां आपको इंटरनेट के जरिए पता लगेंगी। अब आपने कहा कि धोखाधड़ी का मामला जब होता है, जब आप उसको डिजिटली चीज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस किसी भी स्कीम में डिजिटल प्रोसेसिंग जागृति नहीं है। आपको बैंक में जाके, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, उद्यमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है फंडिंग, पैसा चाहिए। कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, 50,000 से लेके 10 लाख 1 करोड़ तक की स्कीम है स्टैंड अप इंडिया जो है, उसमें तो आपको 1 करोड़ तक का लोन फंडिंग कर देती है सरकार। तो मुझे लग रहा है कि आप जब बैंक जाएंगे तो आप जब तक जेब से कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में जो फंडिंग आएगी, तो वहां तक कोई फ्रॉड नहीं है। दिक्कत वहां आती है फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड में, जहां आपके नाम से या तो कोई और व्यक्ति बिजनेस कर लेता है या आपको कुछ पैसा जमा करने को कहता है। तो ऐसे किसी बहकावे में ना आए जहां पर कहें कि हम आपको पहले 10 लाख का लोन देंगे, पहले आप ऐसा करिए, पहले आप 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। तो हम आज आकाशवाणी के माध्यम से सभी महिलाएं उद्यमी जो हमें सुन रही हैं और उनके उनके परिकर जो हमें सुन रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जहां आपको पैसा जमा करने के लिए कहा जाता है। आपको पैसा लेना है उस स्कीम के अंतर्गत, वो आपके अकाउंट में आना चाहिए।
बिल्कुल, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जो स्किल्स हैं इनको देने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उद्यमिता की जानकारी और कौशल प्रदान करने के लिए क्या सरकार की ओर से कोई योजनाएं हैं?
देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वो समय समय पर ऐसे संपर्क कार्यक्रम चलाता रहता है, पर यह बहुत अच्छा आपकी तरफ से एक सुझाव है कि अगर स्कूल में ही, खासकर जो लड़कियों के स्कूल है, अगर वहां पर इन सब स्कीम्स के बारे में उनके टीचर्स बता दें, तो वो लड़की 18 साल की होती है जो बिजनेस करने लायक हो जाती है, तो उसके दहन में रहेगा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं सरकार की स्कीमें बहुत अच्छी बात है। और मैं आकाशवाणी के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय, हमको अगर उनके भी नुमाइंदे सुन रहे हैं तो इसको और आगे प्रचार करना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि हम कई बार जब स्कूल में होते हैं बच्चे, तो दिमाग में आता है ना कि जॉब लेना है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जॉब सीकर नहीं, आपको क्रिएटर बनना है, तो क्रिएटर बनने के लिए फिर हमें वहीं से जानकारी लेनी होगी ना। और अब समय इशारा कर रहा है कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुशीला रामस्वामी और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली जी, आप दोनों का धन्यवाद।
धन्यवाद।
आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए जागृति शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।